एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञानु गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम ना अक्सर सुनाई देता है, खासकर जब बात होती है भाई मुश्किल हालात में शांत कैसे रहें या जिंदगी को सही ढंग से कैसे जिएं।
हाँ,
लूसियस अन्नेस सेनेका या सेनेका द यंगर,
सिनेका, बिल्कुल।
करीब 2000 साल पहले रोम में थे ये। दार्शनिक, नाटककार, राजनेता, लेकिन इनकी बातें आज भी इतनी जिंदा क्यों लगती हैं? क्या खास है?
हाँ, ये तो है ही कमाल की बात, है ना? सिनेका का जीवन और उनके विचार एक पहेली जैसे हैं। देखिए, एक तरफ तो वो स्टोइक दर्शन की बात करते थे,
हाँ, स्टोइकवाद।
मतलब सादगी, भावनाओं पे काबू रखना, बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना। और दूसरी तरफ वो उस जमाने के रोम के शायद सबसे अमीर, सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे।
अच्छा,
और वो भी किसके सलाहकार? बदनाम सम्राट नीरो के।
हाँ, नीरो का नाम तो सबने सुना है।
तो ये जो विरोधाभास है ना,
हाँ
यही उन्हें इतना दिलचस्प बना देता है।
हाँ तो आज कोशिश रहेगी कि इस जटिल शख्सियत को थोड़ा बेहतर समझें। कहाँ से शुरू करें? शायद उस जमाने से, उस माहौल से जहां सेनेका थे।
हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेनेका का जो दौर था वो रोमन साम्राज्य का कह सकते हैं शिखर काल था, ऑगस्टस से नीरो तक का समय।
पीक पे था मतलब।
बिल्कुल पीक पे। ये वो वक्त था जब रोम दुनिया की सुपर पावर था, चारों तरफ शानो शौकत, भव्यता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, राजनीतिक साजिशें, क्रूरता, नैतिक उथल पुथल, वो भी चरम पर थी।
अच्छा,
आप सोचिए, एक तरफ साम्राज्य फैल रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, और दूसरी तरफ सम्राटों की सनक, उनकी तानाशाही का डर, वो लगातार बना हुआ था।
तो ऐसे माहौल में शायद लोगों को किसी सहारे की, किसी अंदरूनी शांति की तलाश ज्यादा रही होगी, है ना?
हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसी माहौल में यूनानी दर्शन और खासकर स्टोइकवाद, वो रोमन एलीट क्लास के लिए ना बहुत आकर्षक बन गया।
क्यों? ऐसा क्या था उसमें?
देखिए, स्टोइकवाद सिखाता था कि असली खुशी जो है वो बाहरी चीजों में नहीं है, पैसे में, रुतबे में नहीं, बल्कि अपने अंदर है।
अपने सद्गुणों में,
हाँ,
अपनी तर्क शक्ति में।
अच्छा, ये दर्शन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मानसिक शांति और गरिमा बनाए रखने का रास्ता दिखाता था। और सेनेका की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या थी?
क्या?
उन्होंने स्टोइकवाद के जो भारी भरकम सिद्धांत थे ना, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एकदम आसान, प्रैक्टिकल बना दिया। वो सिर्फ फिलोसफी की बातें नहीं करते थे, बल्कि उसे जीने का तरीका सिखाते थे।
ये तो बड़ी बात है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी, वो भी तो काफी उतार चढ़ाव वाली रही। स्पेन के कॉर्डोबा में जन्मे, अमीर परिवार था।
हाँ, उन्चेटिका खुद एक जाने माने वक्ता थे, तो सेनेका को भाषण कला और फिलॉसफी की गहरी समझ तो कह सकते हैं विरासत में मिली। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी।
क्यों?
उन्हें गंभीर अस्थमा था, बहुत ज्यादा, इतना कि कई बार उन्हें लगता था कि बस अब गए।
ओ,
शायद इसी अनुभव ने उन्हें जिंदगी की नश्वरता पर, मौत के बारे में इतना सोचने पर मजबूर किया होगा।
और फिर राजनीतिक मुसीबतें भी आईं। सम्राट कैलिगुला उनसे जलता था, और फिर सम्राट क्लॉडियस ने तो उन्हें 8 साल के लिए देश निकाला दे दिया था, कॉर्सिका द्वीप पर।
बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो निर्वासन का दौर था, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद दार्शनिक तौर पर देखें तो सबसे अहम भी।
अच्छा, कैसे?
उन पर इल्जाम तो लगाया गया था कैलिगुला की बहन के साथ नाजायज रिश्तों का, पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश थी। तो उस अकेलेपन में, उस मुश्किल में ही उन्होंने शायद जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उन्हें स्वीकार करना, उनमें भी अंदरूनी शांति खोजना, इस पर बहुत गहराई से सोचा होगा, लिखा होगा। यहीं से उनके लचीलेपन, मतलब रेजिलियंस पर जो उनके विचार हैं, उनकी नींव पड़ी होगी।
लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। क्लोडियस की चौथी पत्नी एग्रिपीना, वो उन्हें रोम वापस ले आईं
हाँ,
और अपने बेटे नीरो उसका गुरु बनवा दिया। और जब नीरो सम्राट बना तो सेनेका उसके सबसे खास सलाहकार बन गए।
और नीरो के शासन के जो शुरुआती 5 साल थे ना, जिन्हें क्विंक्वेनियम नेरोनिस कहते हैं,
अच्छा, हाँ
मतलब वो दौर जब नीरो का शासन फिर भी ठीक ठाक माना जाता था, उस समय सत्ता की बागडोर असल में सेनेका और प्रेटोरियन गार्ड का जो मुखिया था बुर्रस, उनके हाथ में ही थी।
ओ,
और इसी दौरान सेनेका ने बेहिसाब दौलत और ताकत हासिल की, और यहीं से वो विरोधाभास जो है वो और गहरा हो जाता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी।
हाँ, मेरा भी यही सवाल था। एक स्टोइक दार्शनिक, इतनी दौलत, इतनी ताकत, ये सब क्या था? क्या ये उनके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता?
यह सवाल तब भी उठा था और आज भी उठता है। उनके आलोचक कहते हैं भाई ये तो पाखंड है, सरासर पाखंड। जो आदमी सादगी के बात लिख रहा है, दौलत से दूरी बनाने को कह रहा है, वो खुद इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी सकता है? वो भी एक ऐसे सम्राट की सेवा करके जो धीरे धीरे क्रूर और अत्याचारी बनता जा रहा था।
हाँ बिल्कुल।
दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिनेका शायद सत्ता में रहकर नीरो पर कुछ अच्छा असर डालने की कोशिश कर रही थी, मतलब सिस्टम को अंदर से सुधारने की एक शायद एक नाकाम कोशिश।
या शायद वो ये मानते हो कि दौलत और ताकत अपने आप में बुरे नहीं हैं, बुरा है उनका गलत इस्तेमाल।
हाँ ये भी एक तर्क दिया जाता है कि शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति धन और शक्ति का सही उपयोग कैसे कर सकता है, पर ये बहस का मुद्दा है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर नीरो के साथ उनका ये रिश्ता ज्यादा लंबा चला नहीं।
जैसे जैसे नीरो ज्यादा निरंकुश होता गया, सनेका का असर कम होता गया।
हाँ बिल्कुल।
और आखिरकार 65 ईस्वी में नीरो ने उन्हें आत्महत्या करने का हुक्म दे दिया।
ओह,
क्यों?
उन पर नीरो के खिलाफ एक साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया जो शायद झूठा था, लेकिन सेनेका ने मौत का सामना भी उसी स्टोइक शांति और गरिमा से किया जिसके बारे में वो हमेशा लिखते आए थे।
उन्होंने लिखा भी तो बहुत कुछ। उनकी कौन सी रचनाएं सबसे खास मानी जाती हैं?
देखिए सबसे ज्यादा मशहूर तो है उनके एपिस्ट्यूरे मोरालेज एड लुसिलियम।
हाँ, लुसिलियस के नाम नैतिक पत्र।
बिल्कुल। ये 124 चिट्ठियों का कलेक्शन है जो उन्होंने अपने दोस्त लुसिलियस को लिखी थीं, और इनमें दोस्ती, गुस्सा, डर, मौत, समय का सही इस्तेमाल, ऐसे विषयों पर इतनी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है ना
हाँ।
कि आज भी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई समझदार दोस्त आपको जिंदगी के मुश्किलों से निपटना सिखा रहा है। वाह, हाँ मैंने भी इनके बारे में सुना है। और एक और किताब है उनकी, जीवन की संक्षिप्तता पर, डी ब्रेविटेटिविटे।
ओहो, वो तो कमाल की है। उसमें सेनेका का एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार था।
क्या?
वो ये कि हमारी जिंदगी छोटी इसलिए नहीं है कि वक्त कम है, बल्कि इसलिए छोटी लगती है कि हम इसे फालतू चीजों में गंवा देते हैं।
अरे वाह।
सोचिए आज भी हम अपना कितना समय बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर या बेकार की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं।
हाँ।
ये 2000 साल पुरानी सलाह है और आज भी उतनी ही सच्ची है।
बिल्कुल सच्ची है।
उनका कहना था कि अगर जिंदगी को समझदारी से उद्देश्य के साथ जिया जाए तो ये काफी लंबी है।
और गुस्से पर भी उन्होंने लिखा है, डी ईरा। आजकल तो ये बहुत ही जरूरी विषय लगता है।
हाँ बिल्कुल, डी ईरा यानी क्रोध पर। इसमें वो गुस्से को एक तरह का संक्षिप्त पागलपन कहती हैं।
संक्षिप्त पागलपन, अच्छा।
वो बताती हैं कि गुस्सा कैसे हमें अंधा कर देता है, हमसे गलत काम करवाता है, लेकिन सिर्फ बुराई बताकर नहीं छोड़ती हैं, बल्कि गुस्सा आने से पहले उसे पहचानना कैसे है, रोकना कैसे है, और अगर आ ही जाए तो उसे शांत करने के व्यावहारिक तरीके भी सुझाती हैं।
ये तो आजकल की जो थेरेपीज होती है, CBT वगैरह, उसकी तरह लग रहा है।
हाँ, कई लोग मानते हैं कि उनकी ये तकनीकें आज की मनोवैज्ञानिक थेरेपीज जैसे CBT की याद दिलाती हैं। बहुत आगे की सोच थी उनकी।
तो अगर उनके दर्शन का सार निकालना हो, निचोड़ क्या था?
निचोड़ यह है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। पैसा, शोहरत, सेहत, ये सब आते जाते रहते हैं। असली खुशी निर्भर करती है हमारे अंदर के सद्गुणों पर, हमारी समझदारी, हमारी तर्क शक्ति पर। बाहरी दुनिया हमारे काबू में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, वो हमारे काबू में हैं।
अच्छा।
अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम शांत रह सकते हैं। वो मुश्किलों से बचने की बात नहीं करते थे, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहने की बात करते थे।
तैयार रहने की, कैसे?
इसके लिए वो एक तकनीक बताते थे, प्रीमेडिटाटियो मालोरम।
प्रीमेडिटाटियो मालोरम, ये क्या होता है? मतलब बुराइयों का पूर्व चिंतन। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लगता?
हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका मकसद डराना नहीं था, बल्कि तैयार करना था। सेनेका कहते थे कि हमें रोज थोड़ा वक्त निकालकर सोचना चाहिए कि क्या क्या बुरा हो सकता है।
जैसे?
जैसे नौकरी जा सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, कोई अपना दूर जा सकता है। ऐसा सोचने से क्या होता है कि जब सच में कोई मुश्किल आती है ना, तो हम एकदम से चौंकते नहीं है, घबराते नहीं है, क्योंकि हमारा मन उसके लिए पहले से थोड़ा तैयार होता है।
अच्छा।
ये एक तरह की मानसिक वर्जिश है ताकि हम झटकों को सह सकें, रेजिलिएंट बन सकें।
अच्छा, तो ये मुश्किलों का सामना करने की एक तरह की मेंटल प्रेपरेशन है। एक और चीज जो उनके बारे में कही जाती है वो है पसंदीदा उदासीन, प्रेफर्ड इनडिफरेंस। ये क्या चीज है?
हाँ, ये स्टोइक दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे सेनेका ने बड़े अच्छे से समझाया। देखिए, स्टोइक मानते थे कि सिर्फ सद्गुण यानी वर्चू ही असल में अच्छा है, और सिर्फ अवगुण यानी वाइस ही बुरा है।
ठीक है।
बाकी सब चीज़ें जैसे सेहत, दौलत, खूबसूरती या फिर बीमारी, गरीबी, बदसूरती, ये सब उदासीन है, इनडिफरेंट। मतलब खुशी के लिए ना तो ये ज़रूरी हैं ना ही रुकावट।
लेकिन
हाँ, यहीं पे वो पसंदीदा वाली बात आती है। इन उदासीन चीज़ों में भी कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम पसंद कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
उदाहरण के लिए?
जैसे सेहतमंद रहना अच्छा है ना? बीमार होने से तो बेहतर ही है, पैसा होना ठीक है, गरीबी से बेहतर है। तो इन्हें पसंदीदा उदासीन कहा गया। ये स्टोइक आदर्शवाद और असल जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनके बीच एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है।
मतलब एक स्टोइक बीमार होने पर दुखी नहीं होगा, पर वो सेहतमंद रहना पसंद करेगा।
बिल्कुल, वो उसे पाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो निराश नहीं होगा, क्योंकि असली खुशी तो अंदर है।
ये दिलचस्प है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ और फिलोसॉफिकल आइडियल्स के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश। अगर हम सेनेका की तुलना दूसरे स्टोइक दार्शनिकों से करें, जैसे मार्कस ओरेलियस या एपिक्टीटस, तो क्या फर्क नजर आता है?
हाँ, फर्क तो है। मार्कस ओरेलियस, जो खुद एक रोमन सम्राट थे, उनकी किताब मेडिटेशंस ज्यादातर उनके अपने लिए लिखे गए निजी विचार हैं, एक तरह की आत्मचिंतन डायरी है वो।
अच्छा,
जबकि सेनेका के पत्र और निबंध जो हैं वो दूसरों को संबोधित हैं, ज्यादा शिक्षाप्रद हैं, मतलब डायडेक्टिक हैं।
और एपिक्टीटस, वो तो गुलाम थे पहले।
हाँ, एपिक्टीटस जो पहले गुलाम थे और बाद में आजाद हुए, उनका जोर इस बात पर ज्यादा था कि बाहरी चीजें हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं हैं, हमें सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने जजमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। सेनेका, क्योंकि वो सत्ता के इतने करीब थे, वो शायद ये मानते थे कि बाहरी दुनिया में भी सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही नतीजा हमारे हाथ में न हो। वो दर्शन और राजनीतिक जीवन को जोड़ने की कोशिश करते ज्यादा नजर आते हैं।
और उनकी ये कोशिशें, उनके विचार क्या आगे की पीढ़ियों तक पहुंचे? क्या असर रहा उनका?
जबरदस्त असर रहा। आप सोचिए, मध्य युग में भी ईसाई विचारक उनकी नैतिकता की बातों को पसंद करते थे।
अच्छा,
पुनर्जागरण काल में तो उन्हें जैसे फिर से खोज लिया गया। मॉन्टेन, इरास्मस जैसे बड़े विचारक उनसे बहुत प्रभावित थे। शेक्सपियर के नाटकों पर भी उनकी निखी त्रासदियों का असर दिखता है।
और आज के जमाने में?
और जैसा हमने कहा, आज के दौर में तो उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है, जो मॉडर्न स्टोइसिज्म मूवमेंट है ना।
हाँ, सुना है।
उनके तो वो हीरो हैं। सेल्फ हेल्प की किताबें हों, लीडरशिप पर बातें हों, मानसिक मजबूती यानी मेंटल टफनेस की बात हो, अक्सर उनके विचारों का हवाला दिया जाता है। उनकी लिखी बातें आज भी लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के रास्ते सुझाती हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। एक तो वही, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं।
हाँ, ये उनकी किताब जीवन की संक्षिप्तता पर से है, और ये हमें याद दिलाता है कि वक्त कितना कीमती है, इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए, हर पल मायने रखता है।
बिल्कुल। एक और है, हम वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में पीड़ित होते हैं। ये कहां से है?
ये लुसीलियस को लिखे पत्रों में से एक है। इसका मतलब है कि अक्सर हम उन चीजों से ज्यादा डरते और परेशान होते हैं जो अभी हुई ही नहीं है, जिनके होने की हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, भविष्य की चिंताएं।
हाँ, ये तो बहुत होता है।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि अपने डर और असलियत के बीच फर्क करना सीखें, जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, ना कि जो हो सकता है उस पर।
और ये वाला, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी।
ये तो बहुत पावरफुल है।
ये तो स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है, कह सकते हैं।
जो हमारे वश में है, हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी प्रतिक्रियाएं, उन पर ध्यान दो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल।
हाँ,
जो हमारे वश में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, मौसम, किस्मत, उनकी चिंता में घुलने से कोई फायदा नहीं। असली ताकत इसी समझ में है।
एक कहावत और है जो उनसे जोड़ी जाती है, हालांकि शायद उन्होंने सीधे नहीं कही, भाग्य तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है।
हाँ, ये कहावत सीधे तौर पर शायद उनकी नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच को बिल्कुल सही ढंग से बयान करती है। वो मानते थे कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।
अच्छा।
बुद्धिमान इंसान सिद्ध को ज्ञान से, अनुशासन से तैयार रखता है, ताकि जब मौका मिले तो वो उसका फायदा उठा सके। तैयारी ही अवसर को भाग्य में बदलती है। लक इज वेयर प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी।
लेकिन इन सब अच्छी बातों के बावजूद उन पर वो पाखंड वाला आरोप,
हाँ,
वो तो हमेशा लगता रहा।
हाँ, और ये आलोचना नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या एक सच्चा दार्शनिक उस तरह की जिंदगी जी सकता था जैसी सेनेका ने जी? क्या सत्ता और दौलत का मोह उन्हें अपने आदर्शों से दूर ले गया, या फिर उन्होंने वाकई उस मुश्किल दौर में कुछ अच्छा करने की एक ईमानदार कोशिश की, भले ही वो पूरी तरह कामयाब न हुए हों। इसका कोई आसान जवाब नहीं है सच में।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक किस्से भी हैं शायद, कुछ अनसुनी बातें।
हाँ, कई हैं। जैसे हमने उनके अस्थमा की बात की थी, कहते हैं वो इतने ज्यादा बीमार रहते थे कि कई बार आत्महत्या का सोचने लगे थे, लेकिन अपने बूढ़े पिता के दुख का ख्याल करके रुक जाते थे। बाद में उन्होंने लिखा भी कि दर्शन ने उन्हें जीने की ताकत दी।
अच्छा,
एक और बात, इतनी दौलत होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अक्सर जानबूझकर गरीबी का अभ्यास करते थे।
गरीबी का अभ्यास मतलब वॉलंटरी हार्डशिप जिसे कहते हैं।
सादा खाना खाते, सख्त बिस्तर पर सोते, ताकि वो मुश्किलों के आधी रहें और ऐशो आराम के गुलाम ना बन जाएं। अपने आप को टफ बनाते थे।
ये तो काफी दिलचस्प है। और सुना है युवावस्था में कुछ समय शाकाहारी भी रहे थे।
हाँ, कुछ समय के लिए, स्वास्थ्य कारणों से और कुछ दार्शनिक कारणों से भी। लेकिन उस समय रोम में इसे थोड़ा शक की नजर से देखा जाता था, विदेशी पंथों से जुड़ा जाता था, तो शायद राजनीतिक दबाव में उन्हें यह छोड़ना पड़ा।
और उनकी मौत वो भी काफी नाटकीय बताई जाती है।
हाँ, इतिहासकार टैसिटस ने उसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। जब नीरो के हुक्म पर उन्होंने आत्महत्या की तो पहले जहर पिया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ।
फिर
उन्होंने अपनी नसें काटी, खून धीरे बह रहा था तो वो गर्म पानी के टब में बैठ गए ताकि खून तेजी से बहे।
और इस सब के दौरान
वो बिल्कुल शांत रहे, अपने दोस्तों को दिलासा देते रहे और अपने विचार लिखवाते रहे।
अंत तक।
हाँ, अंत तक। मानो वो अपनी मौत से भी स्टोइक दर्शन का एक आखिरी पाठ पढ़ा रहे हों।
वाकई एक असाधारण जीवन और उतने ही गहरे विचार। सेनेका हमें शायद यही दिखाते हैं कि दर्शन सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है, खासकर तब जब जिंदगी आसान ना हो।
बिल्कुल, और यही शायद आज के श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात भी है। सेनेका के जीवन का वो जो तनाव है, आदर्श और यथार्थ के बीच का, दर्शन और दुनियादारी के बीच का, क्या वो आज हमारे लिए भी प्रासंगिक नहीं है?
है तो।
हम सब कहीं ना कहीं एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की मुश्किलें हैं, लालच है, समझौते हैं, वो हमें खींचते रहते हैं।
हाँ,
ऐसे में सेनेका की तरह क्या हम भी दर्शन को सिर्फ एक अकादमिक विषय मान लें, या उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और मुश्किलों के बावजूद फलने फूलने का एक प्रैक्टिकल जरिया बना सकते हैं? ये सवाल सेनेका ने अपने जीवन से पूछा, और शायद हमें भी खुद से पूछना चाहिए।
समापन कथन।
समापन कथन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।